मोहन साक्षी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया हुआ था। काफी देर उसके साथ बिताने के बावजूद अयान साक्षी को अपने दिल की बात नहीं बता पाया और वो जा चुकी थी। अयान अपनी गाड़ी के पास खड़ा अपने दिल की बात बता रहा था कि उसे साक्षी से बहुत प्यार है और साथ ही उसे उसके पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं अनजाने में साक्षी ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। एक पल के लिए साक्षी को लगा कि सच जानने के बाद अयान को आगे बढ़कर गले लगा ले और ये कह दे कि उसके दिल में भी अयान के लिए इतना ही प्यार है। पर अगले ही पल साक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी खुशी गम में बदल चुकी थी। अयान की बातें सुनने के बाद साक्षी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो जल्दी से तेज कदमों से चलते हुए वहां से चली गई ताकि अयान उसे ना देख ले। वहीं अयान को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, तो उसने मुड़कर देखा। साक्षी वहां से जा चुकी थी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल के लिए लगा कि साक्षी मेरे पीछे हैं, लेकिन ऐसी स्टूपिड थिंग सिर्फ मूवीज में ही होती हैं। आई होप किस्मत मुझे उनसे मिलने का मौका दे और इस बार मैं हिम्मत करके अपने दिल की बात उन्हें कह सकूं। भाई जो भी कहे, लेकिन ही इज दी ओनली वन पर्सन जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं और उन्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मेरी बात नहीं मानते तो क्या हुआ, उनकी मिसेस खुराना की बात तो जरूर मानेंगे। आयु को बोलता हूँ, वो भाई से बात करेगी, अयान ने खुद से कहा और फिर गाड़ी में बैठ गया। वो वहां से खुराना मेंशन जाने के लिए निकल गया। वहीं साक्षी वापस अपनी गाड़ी में आ चुकी थी। वो कहीं जाने के बजाय अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग पर सिर रखकर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। साक्षी ने सुबकते हुए कहा, मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती। मेरी सच्चाई जानने के बाद बाकी लड़कों की तरह तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। जैसे सबने मुझे जज किया, मुझे गलत समझा, वैसे तुम भी मुझे ही गलत समझोगे। कहने को सब यही कहते हैं कि हमें पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आती है तब हमेशा एक लड़की को ही जज किया जाता है। साक्षी ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और घर जाने के लिए निकल गई। वो इस बात से उलझन में थी कि उसे अपने पास्ट से प्रॉब्लम है या इस बात से कि अयान ने उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। जो भी था, कहीं ना कहीं साक्षी के दिल में भी अयान ने जगह बना ली थी, पर अपने खराब पास्ट के चलते वो सामने से उसे जाकर कुछ नहीं कह सकती थी। खुराना मेंशन में जहां हमेशा शांति बरकरार देती है, वहीं आज वहां का पार्किंग एरिया गाड़ियों से भरा हुआ था। घर के अंदर भी अलग अलग लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। जब से आरव ने रिसेप्शन पार्टी के लिए हाँ कही थी, गौरवी जी पूरी जी जान से तैयारी करने में जुट गईं। हालांकि उन्होंने पार्टी होटल साज में ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन उससे पहले इवेंट मैनेजमेंट टीम से लेकर हर एक इंसान को उन्होंने लाइन में लगा रखा था। गौरवी जी इवेंट मैनेजमेंट टीम के पास खड़ी थीं और उनके हेड से बातें कर रही थीं। उन्होंने उनसे कहा, वैसे तो मुझे होटल साज की इवेंट मैनेजमेंट टीम पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आरव खुराना का नाम मुंबई में सब जानते हैं, वैसे ही उसके वेडिंग रिसेप्शन पार्टी की गूंज पूरी मुंबई में गूंजनी चाहिए। जी मैम, हमने मेन्यू से लेकर पार्टी की थीम तक सब कुछ एक फाइल में आपको सेंड कर दी है। आप कल तक हमें जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद हम उस हिसाब से तैयारी करवा देंगे, हेड ने काफी सादगी से जवाब दिया। उसकी बातों से साफ था कि उसे नहीं पता था कि पार्टी इतनी जल्दी होने वाली है। गौरवी जी ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पार्टी अगले 10 दिन बाद होने वाली है। पार्टी परसों ही है, 2 घंटे में मैं आपको सब कुछ डिसाइड करके रिप्लाई मेल कर दूंगी। आपके पास सिर्फ 1.5 दिन का टाइम होगा और उसी के अंदर आपको इस पार्टी को बेहतरीन बनाना है। टाइम काफी कम था। होटल साज की इवेंट मैनेजमेंट टीम इस तरह के चैलेंज पहले भी एक्सेप्ट कर चुकी थी। ऊपर से अब वो होटल आरव ने खरीद लिया था, तो ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हेड ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी टीम के साथ वापस होटल लौट गया, आखिर उस काम पर जो लगा था। इवेंट मैनेजमेंट टीम को उनका काम समझाने के बाद गौरवी जी कबीर की तरफ पढ़ी और उन्होंने उससे कहा, सभी मीडिया पर्सन को इन्वाइट करो, चाहे वो किसी छोटे चैनल से हो या कोई यूट्यूब चैनल से ही क्यों ना हो। जिन्होंने भी आरव की नेगेटिव पब्लिसिटी की है, उन सबको खासकर इन्वाइट करना। दादी, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, कबीर ने जवाब दिया। वो लैपटॉप के साथ बैठा हुआ था और इनविटेशन कार्ड सेंड कर रहा था। तभी गौरवी जी ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और कहा, एक मिनट, तुमने इनविटेशन कार्ड कब बनाया और तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा? अरे ऐसे कैसे तुम आरव के रिसेप्शन पार्टी का कार्ड बना सकते हो? पहले मुझे दिखाते तो सही, फिर मैं डिसाइड करती। गौरवी जी हर एक तैयारी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, इसलिए वो कबीर पर नाराज होते हुए बोली। कबीर ने बिना कुछ कहे लैपटॉप की स्क्रीन गौरवी जी की आंखों के सामने कर दी। स्क्रीन पर डिजिटल इन्विटेशन कार्ड बना हुआ था। उसे देखने के बाद गौरवी जी के मुंह से निकला, अरे ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत है तभी आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता था ये आपको पसंद आएगा, कबीर ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। गौरवी जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो कबीर के पास आकर बैठ गई और लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगी। अचानक उन्होंने कहा, एक काम करो, एक इन्विटेशन कार्ड छवि सिंघानिया को भी भेजना,
वैसे तो अयान आने वाला है, पर एक सेपरेट कार्ड उसे भी मिलना चाहिए। उसे भी तो पता चले कि उसके धोखे के बावजूद भी आज मेरा आरव आगे बढ़ रहा है। ये गेस्ट लिस्ट आरव सर ने ही डिसाइड की है, और ट्रस्ट में दादी, आपकी छवि सिंघानिया का नाम इसमें टॉप लिस्ट में था, कबीर ने हंसकर जवाब दिया। बाकी तैयारी देखने के बाद गौरवी जी ने इधर उधर देखा, उन्हें आयु कहीं नजर नहीं आई, तो उन्होंने कबीर से कहा, आयु कहाँ है, वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आरव ने कॉल किया था कि डिजाइनर की टीम आने वाली है, वो ऊपर किसी रूम में होगी, उन्हें इस पापा जाना था और सर उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे अरेंजमेंट वहीं पर करवा दिए, कबीर ने जवाब दिया। गौरवी जी ने उनकी बात पर हामी भरी और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई। आज वाकई खुराना मेंशन में काफी चहल पहल लगी थी। इन सबसे अलग आरव अपने रूम में बैठकर अभी भी ऑफिस के कामों में ही बिजी था। स्पा ट्रीटमेंट लेने के बाद आयु अपने रूम में आई, आरव अपने कामों में लगा था तो उसने आयु पर ध्यान नहीं दिया। आयु आरव के सामने गई और अपने बालों को दिखाते हुए कहा, मैंने नया हेयर कट लिया है, कैसा लग रहा है? एक आधा इंच बाल ट्रिम करवाना कोई नया हेयर कट लेना नहीं होता है, आरव ने आयु की तरफ देखे बिना कहा, उसका ध्यान अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर था। आरव के कहने के बाद आयु ने खुद को मिरर में देखा, वो सच कह रहा था। आयु ने बिल्कुल थोड़े से हेयर ट्रिम कराए थे और उसकी हेयर स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया था। हाँ, स्पा के बाद हेयर शाइनी और बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे थे। ठीक कह रहा है ये, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया, आयु ने मिरर में देखकर कहा। उसके बाल अभी भी कमर जितने ही लंबे थे। फिर वो आगे बोली, अभी भी उनकी टीम यहीं पर मौजूद है क्योंकि दादी सेशन ले रही हैं। ऐसा करती हूँ, जाकर थोड़ी हेयर लेंथ कम करवा लेती हूँ ताकि थोड़ा चेंज तो लगे। अपनी बात खत्म करके आयु बाहर जाने को हुई, तभी आरव ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है कुछ करवाने की, जैसी हो अच्छी लगती हो। I love your long hair।
आयु का चेहरा दूसरी तरफ था। आरव की बात सुनकर उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। फिर वो आरव की तरफ पलटी और सीरियस फेस बनाकर कहा, लेकिन मुझे छोटे बाल पसंद है, बहुत मुश्किल होती है इन्हें कैरी करने में। एक काम करती हूँ, कंधे तक तो करवा ही लेती हूँ। आयु आरव को परेशान करने के लिए ये सब जानबूझकर बोल रही थी। आरव ने आयु को घूर कर देखा और कहा, तुम करवा कर तो दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, आयु ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। आरव ने लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, डाइवोर्स दे दूंगा। आई विल गिव यू डाइवोर्स मिसेस खुराना, एंड आफ्टर दैट आई विल मेक योर लाइफ हेल। आरव की आवाज काफी स्ट्रांग थी, जिसे आयु एक पल के लिए कांप गई। फिर आयु ने खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की और हंसते हुए कहा, अच्छा और कोर्ट में जाकर क्या बोलोगे? मेरी वाइफ ने मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी हेयर कट करवाई, इसलिए मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहूंगा कि मेरी वाइफ डॉक्टर होने के बावजूद नकली दवाइयों का बिजनेस करती हैं, इलीगल काम करती हैं, ऐसे लोगों से मिलती हैं जो इलीगल फाइट्स करती हैं और फाइट क्लब चलाती हैं। उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और डिवोर्स तो मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा। यू नो वेरी वेल, मेरे लिए ये सब करवाना मुश्किल काम नहीं है, आरव ने चिढ़कर जवाब दिया। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आयु ने मासूमियत से कहा। उसे समझ आ गया था कि आरव ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा है, तो वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, चलो छोड़ो इन सबको, मुझे ये बताओ कि मैं पार्टी में क्या पहनने वाली हूँ। आई एम श्योर तुमने मेरे लिए स्पेशल ड्रेस डिजाइन की होगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? नीचे डिजाइनर की टीम आई हुई है, जाकर उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दो, वो डिजाइन करके भिजवा देंगे, आरव ने लापरवाही से जवाब दिया और बैठकर वापस अपने काम में लग गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी डिजाइनर की टीम से ज्यादा अच्छी डिजाइनर तुम हो, और तुमने जो वेडिंग ड्रेस और बाकी फंक्शन के लिए ड्रेस डिजाइन की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शादी की आखिरी रस्म रिसेप्शन पार्टी है, इसके लिए भी तुम ही मुझे ड्रेस डिजाइन कर दो प्लीज, आयु ने काफी प्लीडिंग वे में कहा। वो चाहती थी कि आरव ही उसकी ड्रेस डिजाइन करे। आरव ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं मिसेस खुराना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले मेरे इस शादी से बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे, तभी मैं चाहता था कि मेरे इमोशंस मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस में दिखाई दे और वही तुम पहनो। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी तक तुमने ये प्रूफ नहीं किया है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा उस दिन के बाद से तुम सिर्फ मेरी डिजाइन की हुई ही ड्रेस पहनोगी। फिलहाल के लिए ये आरव खुराना इतना वेहला नहीं है कि एक ऐसी लड़की के लिए ड्रेस डिजाइन करे जो किसी इंसान बर्बाद करने के मकसद से उससे शादी करे। आरव ने बातों ही बातों में आयु को फिर सुना दिया। इस बार आयु ने उसे कुछ नहीं कहा। हाँ, आरव की बातों से उसका चेहरा जरूर उतर गया था। आयु ने नकली मुस्कुराहट के साथ हामी भरी और नीचे चली गई।